दूसरा राजा उसका तीसरा अध्याय। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहा का पुत्र योराम शिमरोन में राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी वह नबात के पुत्र यरोबाम के ऐसे पापों में जैसे उसने इसराइल से भी कराए लिपटा रहा और उससे ना फिरा। मोआब का राजा बेशो बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के राजा को 100,000 बच्चे और 100,000 भेड़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब अहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इसराइल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शमरोन से निकलकर सारे इसराइल की गिनती की और उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यों कहला भेजा कि मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? तो उसने कहा, हाँ मैं चलूंगा, जैसा तू वैसा मैं, जैसे तेरी प्रजा वैसे मेरी प्रजा और जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इसराइल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। और इसराइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें? इसराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह तो वहां है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इसराइल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इसराइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। इसराइल के राजा ने उससे कहा, ऐसा ना कहें, क्योंकि यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया है कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदरमान ना करता तो मैं ना तो तेरी और मुंह करता और ना तुझ पर दृष्टि करता। अब कोई बचवैया मेरे पास ले आओ। जब बचवैया बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर आई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और इसको हल्की सी बात जानकर यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नाश करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब खेतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। पियान को अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह गया और देश जल से भर गया। ये सुनकर कि राजाओं ने हमसे युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है, जितने मोआबी की अवस्था हथियार बांधने योग्य थी वे सब बुलाकर इकट्ठे किए गए और सिवाने पर खड़े हुए। बिहान को जब से उठे उस समय सूर्य की किरणें उस जल पर ऐसी पड़ी कि वह मोआबियों की परली और से लहू सा लाल दिखाई पड़ा। तो वे कहने लगे, वह तो लहू होगा, निसंदेह वे राजा एक दूसरे को मार कर नाश हो गए हैं, इसलिए अब हे मोआब लूट लेने को जाओ। और जब वे इसराइल की छावनी के पास आए ही थे कि इसराइल उठकर मोआबियों को मारने लगे और वे उनके सामने से भाग गए और वे मोआब को मारते मारते उनके देश में पहुंच गए और उन्होंने नगरों को ढा दिया और सब अच्छे खेतों में एक एक पुरुष ने अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला। यहाँ तक कि करिशेत के पत्थर तो रह गए परंतु उसको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। यह देखकर कि हम युद्ध में हार चले, मोआब के राजा ने 700 तलवार रखने वाले पुरुष संग लेकर एदोम के राजा तक पांति चीर कर पहुंचने का यत्न किया, परंतु पहुंच न सका। तब उसने अपने जेठे पुत्र को, जो उसके स्थान में राज्य करने वाला था, पकड़कर शहरपनाह पर होम बलि चढ़ाया। इस कारण इज़राइल पर बड़ा ही क्रोध हुआ, सो वे उसे छोड़कर अपने देश को लौट गए।